ओम शांति। आज का टॉपिक है ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना, इसका दूसरा भाग। तो उस दिन तो काफी बातें कवर हो गई थी, फिर भी दो चार बातें जो याद आ रही प्रैक्टिकल लाइफ से। सबसे पहले 89 में मैं ज्ञान में आया तो बड़े हंसी खुशी से जीवन बीत रहा था, लौकिक अलौकिक दोनों, बहुत अच्छा जीवन लग रहा था। उसमें बाबा मिले तो और उसमें बहुत अच्छा हंसी खुशी में लाइफ बीत रहा था हमारा। तो 90 में क्या हुआ कि मुसल कहते ही मेरे को जेल याद आ जाता है, क्योंकि हमारे मामा जी लौकिक में वो अपने आप जो इंदिरा कुछ निकला था गवर्नमेंट से कि ऑपरेशन करने का, वो पांच जिनको तीन बच्चे होते हैं उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ऑपरेशन कर रहे थे उन दिनों में, और पैसा भी दे रहे थे। तो वो पांच बच्चों के पिताजी, मतलब पांच बच्चों के पिता थे। उसके बावजूद उन्होंने स्व खुशी से पैसे के लालच में ऑपरेशन कर लिया था। तो उनके बाद पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया, हमको और बच्चे पैदा करना था, वो तो पागल हो गए सोच के। वो पागल होने के बाद गाली गलौज मार पीट करने लगे गांव में, अपने ही परिवार से, गांव वालों से। तो उनको क्या किया, उसका नतीजा क्या होगा, जबरदस्ती पकड़ के जेल में ले गए। जेल में लेके जाने के बाद पहले जेल में गए तो उनके थ्रू सबसे बड़ा आगरा का हॉस्पिटल था फेमस मेंटल के लिए, उसके बाद पूना एरोड़ा का, एरोड़ा में पूना में बहुत बड़ा है, जैसे तपोवन का है, बहुत बड़ा एरिया है खुला, और अलग अलग कैटेगरी है पागलपन के भी, उसमें रखा जाता है उसमें। तो 90 में मुझे मालूम, बड़े मामा का फोन आया कि भाई तुम्हारे छोटे मामा को वहाँ उधर रखा है और उनका एक साल होने को आया है और उनको बोलते हैं लेके जाओ, तुम जाके मिल के आओ, देखो अगर छुड़वा सकते हो। तो मैं भी पूना में नया नया ही था, तो मैं पता करके मेरा सोसाइटी सेंटर पर जाके मुरली सुन के मैं आते समय होके आया, बाबा की याद में साबुदाना पे खिचड़ी बना के लेके गया था। तो उसको मिल के खिला के आऊं बोल के मैं गया था। तो गया तो मैं देखा जैसे भैंस होते हैं ना अलग अलग कैटेगरी के, एक साथ पानी से नहला रहा था, कुछ क्या क्या वैरायटी नाटक देखने को मिला पागलपन के, तो बहुत अच्छे अच्छे सीन देखने को मिला, लेकिन घबराहट भी हो रही थी। कोई बोलता दौड़ के आए मुझे बीड़ी दो, क्या क्या बोल रहे थे वो अपने अपने प्रॉब्लम्स, जिस बात से वो उठे, तो मैं घबरा गया। तो पुलिस आया मेरे पास, किसको मिलना है, कहाँ जाना है आपको, तो बोला फलाने फलाने वार्ड नंबर दिया था गेट पर। तो बोला मैं बुलाता हूँ, तुम बैठो ना, तो तुम भी इनके जैसा ही हो जाएगा, थोड़े टाइम यहाँ रहेगा तो देखेगा सुनेगा। तो बोला कि ठीक है, मैं बैठा वेट किया तो उनको बुला के लाया, तो उसके साथ दूसरे साथी भी आ गए, उनको मैं साबुदाना का खिचड़ी देने अलग रूम में रखा था हमको बात करने के लिए विजिटिंग रूम में, तो वहाँ भी पहुँच गए वो लोग। तब जाके वो एक पुलिस है ना, लकड़ी लेके नहीं आया, मुसल लेके आया पूरा अच्छी तरह बड़ा, वो कुली वाला होता है ना कूटने वाला, उसको देखते ही भाग गए वो। लकड़ी वाले बहुत आए, पुलिस गए जाओ बोला तो कोई नहीं गया, उसको आके देखते ही कुछ बोला, इशारा किया, भाग गए सब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा हमको कितना विघन, हमको कितना सचेत करते हैं सुधारने के लिए, हमारी आदतों को सुधारने के लिए, संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, कई सारी बातों का हम झेलना बहुत आदत ही हो गए, लेकिन उससे मुक्त होकर अलग से जीवन जीने का बहुत जोर लगाने के बावजूद भी सक्सेस नहीं होते। फिर कर्म भोगना के रूप में, बीमारी के रूप में सजा भोगनी पड़ती है, वो क्या है, मुसली तो है एक प्रकार से। तो बात चल रही थी, सबसे पहले मधुबन आया 89 में, मतलब 89 में पहली बार आया बाबा से मिलने के लिए, फिर 15 दिन सेवा के लिए आया, फिर एक महीना दो महीना ऐसे पेट नहीं भरता था एक दो महीने से। लेकिन क्या हुआ, ईमानदारी और मेहनत करने वालों को मौत नहीं है, और ईमानदारी की थोड़ा नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ये प्रैक्टिकल अनुभव के आधार से। हम पूना में बिना रिकमेंडेशन से प्राइवेट में थे, लेकिन आजकल हर जगह रिकमेंडेशन चाहिए। तो नौकरी लगने के मतलब प्राइवेट में बोला आपका पहचान कौन है, हमारा पहचान मेरी ईमानदारी और मेहनत, मैं यही बोलता था। तो बोला भले आ जाओ, उनको जरूरत जहाँ होती थी वो रख लेते थे। तो फिर मैं कुछ दिनों के बाद, एक साल रहा सिंधियों का ही था दुकान, तो वो उसमें क्या हुआ कि एक ईमानदारी के कारण ईमानदारी की सजा भोग रहा हूँ मैं, मधुबन निवासी जो बना ना ईमानदारी की सजा एक हिसाब से। सजा मतलब क्या है, वहाँ एक भाई था मारवाड़ी, उसको बेचारे को वो तंग करते थे वो उसमें भोजन में मजा लेने के लिए, तो मैंने बोल दिया उनको, मेरे से रहा नहीं गया, बाबा की मुरली में आता किसी को दुख देना नहीं और लेना भी नहीं, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा छोटा भाई जैसा है मेरा भोजन दोनों मिलके खाते थे, उसका भोजन फेंक देते थे। तो उसने बोला इसको कुछ असर नहीं हो रहा है, तो एक दो दिन पता क्या वो देखा उसने नाले में भोजन था, देखा उसको अच्छा नहीं लगा सेठ के लड़के को, तो उसने मेरे को आके बोला, उसको पूछा उसने जबरदस्ती कान पकड़ के, छोटा था वो, उसने बता दिया रियल में, उन भाई ने बताया मेरे सामने डाला था उस अब्सेंट में, तो मैंने बोला तुम ये भोजन नहीं खाना मेरा खाना, तो बस उसको रख लिया, मेरे को दोपहर को भोजन के लिए रेस्ट होता है 1 घंटा, आते ही पेमेंट पकड़ा दिया हाथ में मेरे को, आपने उसको ये बोला? हाँ बोला, चल ठीक। तो मैं आया कमरे बाबा के पास, आया बाबा ये ईमानदारी की सजा है शायद, तो फिर मैंने बोला कि उसी दिन मुरली में था कि तुम बड़े सेठ की नौकरी करना चाहिए तुमको, ये हद के सेठ है ना, बहुत नौकरी कर चुके हो, ऐसे कुछ मुरली में पॉइंट आया था साकार में। तो मैंने बोला ये बात तो सही है, 15 साल नौकरी किया बॉम्बे पूना में, पेट भर गया था, देखा था दुख दर्द कैसे होता है, नौकरी मना ना करे तो चाकरी नौकरी तो होता ही है, करना पड़ता है। तो फिर मैंने देखा ये उसी दिन अनाउंस हुआ कि मधुबन में तपस्या वर्ष शुरू हुआ था जस्ट, कि भाई जिनको कार सेवा में जाना है वो जा सकते हैं, हेल्दी हो, कुमार हो, निर्बंधन हो और फ्री हो इधर से। तो हमने सबसे पहले हाथ उठाया, सोचा भी नहीं क्या होगा। फिर उस समय 25 दिसंबर 1991 से फिर इधर ही हम रहने के ख्याल से ही आया था, अभी जाके नौकरी उधर भी करना है, इधर ही बाबा के घर में नौकरी करेंगे, तो ये सोच के आया। तो इधर किस प्रकार से विघ्नों को हम मुसल कह रहे हैं, यहाँ विघ्न तो कोई खास नहीं है, हम जो बोलते हैं ना जो बड़े बड़े महारथी हैं उनको बड़े बड़े विघ्न आते हैं। यहाँ भी कितनी बार बताया सचिन भाई ने कि जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं ना उनको बहुत बातें होती है उनके जीवन में, पुरुषार्थ में बाधाएं परिस्थितियां बहुत आती, आना चाहिए होना चाहिए मुसीबत जानबूझ के। अगर हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं है तो समझो हमारा पुरुषार्थ ढीला है, तो ये भी बात सही लगा मेरे को। लेकिन शुरू शुरू में क्या बहुत अच्छा नहीं लगता है, ये इतना हंसी खुशी में जीवन बिता रहे और हमारे जीवन में इतने लाइफ में क्यों, तो ऐसी कई सारी बातें हैं। और जो तिहाड़ जेल में है ना, जो जेल में डाला जाता है उनको कुछ काम दिया जाता है, वो अगर अच्छी तरह से करते हैं तो उनको सजा कम की जाती है। और कई बीके का भी समाचार सुनते हैं, ज्ञानामृत में आता है कि अगर ये अच्छा अपने को सुधारा है उसकी अवधि कम किया जाता है, जल्दी उसको फारिग किया जाता है सजा से। तो इस प्रकार हम भी अगर यहाँ रह के इन बातों को ध्यान में न रखते हुए जो बाबा कहते हैं वो करने से, अपने आप को सुधारते रहने से, संस्कार परिवर्तन करने से, वो इधर उधर देखा देखी में हम लोग ढीले हो जाते हैं, उसको न देख के बाबा जो बोले वो करने से हमारे संस्कार जल्दी परिवर्तन होने से हमको हरेक से सहयोग मिलता रहेगा और हम भी सबको सहयोग दे सकते हैं। संगठन में रहते थोड़ा वो कुछ नहीं करता है फिर भी इतना हंसी खुशी से चल रहा है, तो हम भी ऐसे रह सकते हैं, और इतना हम मेहनत क्यों करें ऐसा हम सोचते हैं, कभी कभी संकल्प आता है तो हम भी डिले हो जाते हैं। तो फिर भी जो बाबा लक्ष्य देते हैं, जिस एम से आए हैं उस एम को पूरा करने के लिए अच्छी तरह उसमें लगना पड़ेगा, तो ही हम निर्बंधन और निर्विघ्न होके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ याद तो नहीं, मैं लिख के लाया कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। मैं सबसे पहले 89 में सेंटर पर गीता पाठशाला था भोसरी पूना में, तो वो सारी बातें पूछ लेता था, मैं नया नया था, गीता पाठशाला में ही सोते थे हम लोग, तो भाई से पूछता था मधुबन कैसा है, दादिया क्या है, बाबा क्या है, रोज सोते सोते रात को 10 बजे तक यही चर्चा चलती थी। तो मधुबन का जो ओम शांति भवन का फोटो है ना वहाँ लगा हुआ था गीता पाठशाला में, तो ये 3,500 लोग बैठते हैं चेयर डाल के और चेयर निकाल के 5,000 बैठते हैं, मधुबन का थोड़ा कैंपस कैसा है वो सारा बता दिया था। वो रात को सोते समय मेरे को रोज सपने में आता था, सपना कहो या जो भी संकल्प सुनते हैं वो रोज विजुलाइजेशन होता था बहुत अच्छी तरह, जैसे मैं यहाँ के प्रैक्टिकल घूम के देख के गया हूँ। तो ये निकाला ना मेरे को काम से, तो मैं मई मास में इधर मैं अचानक आ गया। पूना से खाली 90 रुपये की टिकट था अहमदाबाद तक। तो उस समय आया मैं, देखा मैंने ये गेट जो था ना, ये कैंपस जो बड़े बड़े लगे हैं लोहे का, मैं उसी समय देखा था। उस समय नहीं था ये, 89 में ही देखा था, कि 90 में सॉरी। तो वो देखा उसमें नहीं था, छोटा गेट था, कूद के कोई भी जा सकता था। अब भी ये लगे हैं, ये जो बड़े बड़े बड़ा गेट बड़ा बना दिया, उसी समय मैं देखा था। फिर उसने बोला यहाँ सब देवता समान रहते हैं, फरिश्ते रहते हैं, सब सुखदाई है, सुखदेव हैं। जब मैं आके यहाँ देखा तो एक एक बातों से एक एक से विघ्न आने लगे, एक एक से उबार कटुपन का थोड़ा अनुभव होने लगा। तो मैंने बोला बाबा जी ये क्या है, आपने तो वहाँ फरिश्ते दिखाए। तो बोला नहीं, ये आपको ही बनना है, ये ट्रेनिंग है फरिश्ता और देवता बनने की, इसमें अगर शामिल होना है। ये जैसे मिलिट्री में होता है, रिजर्व बैंक जो पुलिस को तैयार करते हैं, देखते हैं मिलिट्री में कितना ट्रेनिंग देते हैं उनको, तो वो यहाँ रिहर्सल करते हैं सब, उसकी ट्रेनिंग है। वो आपको यहाँ करना है, सीखना है, ऐसे बनना है। तो सब समझ गए हम, सिख सिख झुक झुक मरमर, वो याद आया। फिर भी बड़ों की दादियों को देखते थे हल्के हो जाते थे, कुछ भी बात होती थी भूल जाते थे, ये इसने दंग किया ऐसी बात है, सब भूल जाते थे। दादियों को आंगन में देख के पेट भर जाता था, बहुत खुश हो जाते थे, थकान मिट जाती थी, इसके कारण हम टिक पाए। फिर कभी कभी मेरे को लगता था दादी जो है ना, कोई एक मधुबनी वासी क्लास गलती करता था संगठन में रहते, ये व्यक्तिगत रूप से भी या संगठन संगठित रूप से भी, वो 200 भाई बहनों का क्लास रखती थी दादी, दो दो घंटा। तो वो गलती दूसरा कोई नहीं करे। हमें क्या लगता था कि भाई एक भाई गलती किया तो उसी को बुला के वो डायरेक्शन उसको सचेत करे और उसको जो भी सुनाना है पनिशमेंट देवे, हम सबको सुना के क्या फायदा। वो बात वो परिस्थिति हमको मालूम ही नहीं रहता था, लेकिन दादी कहती थी इससे क्या हमको भी शिक्षा मिलती थी, इस गलती के कारण उसको इतना यहाँ से ना जाना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा, हमारी नौबत ना आ जाए ऐसे हम सचेत हो जाते थे। ये भी एक हमको उस भाई के लिए मुसल आया, वो बात वो खत्म हो गया वहाँ, तो वहीं उसको खत्म करना चाहिए। नहीं दादी उसके लिए हर महीने में एक आध केस ऐसा होता था, उसके ऊपर क्लास होता था, तो उसके लिए सब सावधान हो जाते थे। फिर कोई भी बात होती थी, कितना भी सीक्रेट हो, दादी इनडायरेक्टली डायरेक्टली थोड़ा सार रूप में बता देती थी। नहीं तो इधर उधर वायुमंडल में चूचा चूचा तो पता तो पड़ ही जाता है, लेकिन दादी स्पष्ट बता के सबको क्लियर कर देती थी। तो ये मैंने देखा कि हम जिस उद्देश्य आए उसी उसी को करते रहने, तो हम दूसरे उद्योग में रहे लग जाए तो वो हमारे लिए भी ठीक नहीं, संगठन के लिए भी ठीक नहीं, वो मुसल का काम हो जाता है फिर, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। फिर एक बार हॉस्पिटल में 93 में बाबा से मिलने के लिए चन्ना रेड्डी आए थे, गवर्नर चन्ना रेड्डी नए नए। तो मैं वहां था, संडे का दिन था, सब छुट्टी छुट्टी मना, हॉस्पिटल के फरिश्ते जैसे उड़ जाते थे, माउंट आबू से गायब, जैसे धरती में गायब या ऊपर गए, कहाँ दिखाई नहीं देते थे बिल्कुल, एकदम आजाद पंछी की तरह कहाँ उड़ जाते थे पता नहीं, कोई भट्टी में, कोई खेलने में, कोई घूमने में। तो हमारी बारी, रूपा बहन प्रताप भाई हम तीन ही लोग थे, तो अंकल जी साथ में लेके आए, उनको एक्सरे करना था लेकिन बाथरूम जाना था उनको, उस समय कोई सफाई वाले भी नहीं आते, 8 नंबर के सामने जो डॉक्टर विजिटिंग रूम का बाथरूम है। तो प्रताप भाई मेरे को बोले कि भाई इंटरव्यू में तो बोला था तुमने, जो बोला जैसे जो वो सेवा करेंगे तो अभी करो, ये सेवा है, थोड़ा रिक्वेस्ट से बोला छोटे भाई को जैसे बोलते हैं। तो मैं उस दिन वही स्नान किया था, तो बोला ये थोड़ा उनको बाथरूम जाना है, सफाई करना, ठीक है हम किया। लेकिन उस समय थोड़ा सा फील हुआ ये क्या मैंने करना पड़ रहा है सब, ये भी मैंने देखा थोड़ा सा संकल्प आता है उसको, लेकिन हमें खुशी हुई, उनको भी अच्छा लगा। कई सारी बातें ऐसे मुसल के रूप में लगता है, लेकिन उसको थोड़ा झेलने से अच्छा लगता है,
झेलने वाला
उसको पास करना,
सहन करना,
सहन करना। फिर मधुबन एक चैतन्य मंदिर भी है समझे, इसमें होनहार देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे में अगर कोई एक दो के पीछे पता लगे ये हमारी निंदा कर रहा है तो उस समय कैसा लगता है, बहुत बेकार लगता है सचमुच वो लगता है। लेकिन वो उसको पता नहीं, उस समय वो भूला हुआ है, उस समय उसको बेचारा कह सकते हैं, तीन बाप का बच्चा हो के भी, इसलिए वो ऐसी भूल कर रहा है। लेकिन हमें तो पता है ना, हमको उस समय थोड़ा सा सावधानी से संकल्प चलाने का पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी उसमें बच सकते हैं, नहीं तो वरना हम भी उसकी निंदा करने लग जाते हैं कभी, वो भी तो ऐसा है, तो वातावरण खराब हो जाता है इससे। फिर इसमें लगता है कि अरे ये भी यहाँ भी ये है, मधुबन में भी ऐसा होता है, तो फिर वहीं अच्छे थे, बात तो सही है। फिर ऐसा लगता है कि यहाँ से इस संगठन से कहीं दूर जाए, दूसरा कोई संगठन में जाए, दूसरा कुछ सेवा करे, लेकिन कहीं भी जाओ वही 19-20 बातें तो होती ही है, कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ता है। वो वहाँ दूसरे रूप में दूसरी, हाँ ओखली है तो मुसलों का वार तो होना ही है किसी न किसी रूप में, नहीं तो हमारे में वो निखार नहीं आएगा। दूसरे रूप में दूसरे व्यक्ति से दूसरी बात ही आएगी, वो मुसल का काम करेगी, वार तो खाना ही है क्योंकि हम ओखली में सिर दिया है। और दूसरा क्या, हम सहन करते हैं ना, कभी कभी संकल्प आता है बार, और मैं इतने साल से सहन कर रहा हूँ, तो वो सहन सील, लास्ट में सील शब्द आता है, तो हमने वो संकल्प भी ना सील मना, सील बंद पैक स्टैंप, कल जैसे श्याम भाई सुना रहे थे वो मुरली में था ना, कि उसके बाद कोई खोल ना सके, थप्पा लग जाए तो बाबा ही खोल ले, सतयुग में खुल जाए वो संकल्प हमारा, तो हम इतना सहन शक्ति, तब सहन शक्ति का वो रूप ले लेगा, फिर हम समा जाए उसको, हमने इतना सहन किया, मेहरबानी थोड़ी किया, हम अपने आप को उतना शक्तिशाली बनाने की जैसे कोशिश किया, ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें पास होकर दिखा रहे हैं। फिर मैंने देखा अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट करने तक, अटेंशन रखने के लिए जो बाबा बताया है, चेकिंग करने के लिए जो हमने चार्ट रखते हैं, किसी भी प्रकार से हर एक का अपना अपना लक्ष्य होता है, और जो स्वचिंतन की बात है, लगन मगन जो भी बाबा ने बताया है, उसी के अंतर्गत हमारी दिनचर्या हो और सेवा करते रहे, केवल सेवा भी नहीं होती है, स्व उन्नति भी नहीं होती, दोनों का बैलेंस चाहिए तभी मजा आता है। खाली आप पुरुषार्थ करो हो नहीं पाता, और सेवा ही सेवा करो दिन रात तो भी ये इम्बैलेंस हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, उसमें फिर कई सारी बातें होती है, ये व्यक्ति तो ऐसा है, हम उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, फिर वो कंप्लेंट भी करते हैं, ये तो ज्ञान युग में मस्त रहता है, आया है ड्यूटी जो लिया है डिपार्टमेंट की वो नहीं करता है, फिर वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी हमको अच्छा नहीं लगता है, कंप्लेंट। इसमें फिर मैंने देखा कि इसमें भी कभी कभी हमको दुख फील होता है, फिर भारी लगता है, कभी कभी हम दूसरों का भी विघन देख के हम डर जाते हैं, अपने को तो कोई विघन नहीं है, अरे बेचारे को उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके साथ ये ऐसा है वो वैसा है, तो इस प्रकार के संकल्प चला के भी हम अपने आप को भारी कर देते हैं, तो वो भी एक मुसल बन जाता है अपने आप पे, कोई नहीं करता है, कोई नहीं डालता है विघन, लेकिन हम अपने आप अपने लिए मुसल बन जाते हैं। नहीं अभी तो नहीं लग रहा है जितना, ये तो मधुबन निवासी बनना और
आगे बढ़ने की,
लाइट रहना, लाइट करना, उस आधार से तो कुछ नहीं लगता, वो बात याद आती है तो
लाइट लग रहा है
डर तो खत्म हो गया, बाकी जितना एम रख के होमवर्क दिया जाता है उतना तो नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरा जोर लगा के करने की कोशिश में है। तो यहाँ लिखा है कि मैंने देखा कि जो बाबा ने एक सेकंड का पेपर, जैसे अभी नोट बंद हुआ, 6 महीने से अनाउंस किया है कि 6 महीने से रोज विज्ञापन आता था कि भाई ये नोट, मैंने इस प्रकार की जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो चेंज कर लो या टैक्स भर लो, ऐसे बाबा हमको कहते, सभी यहाँ रहते हैं या बाहर रहते हैं, फर्स्ट पेपर और लास्ट पेपर अनाउंस किया है बाबा ने, नष्ट मोह स्मृति सरप, और टाइम कितना है उसके लिए, 1 सेकंड, वो स्थान की बात नहीं है, स्थिति की बात है, तो अगर ये भी एक स्पिरिचुअल सर्जिकल स्ट्राइक कर दे बाबा कभी आज रात से, तो वो क्या होगा हमारा हाल, मैं वही सोच रहा था, वो तो हो गए कितना बेहाल हो गए बेचारे, अननेसेसरी आदतों को उनको आफत बन गई, क्या क्या हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, कितनी परेशान है लोग, तो हम अपनी आदतों से परेशान हो जाते हैं या रहते हैं, तो कितनी बड़ी विडंबना है ये, मधुबन में भी रहते इतनी फैसिलिटी होते, इतना वातावरण शुद्ध श्रेष्ठ संघ होने के बावजूद भी अगर हम चूचा हूँ करके, मैंने इस प्रकार से रोना मन से या तन से रोते हैं, तो उनकी क्या गतिमति होगी, उनकी क्या हाल होगा, संगम का मजा नहीं ले पाते हो, संगम का सुख नहीं ले पाते हैं। कईयों को मैंने देखा है कि कुछ कारण बनता है कौड़ियों के पीछे। अभी कईयों को देखा है शुरू से कि ना हमारा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, जिनका है वो जाने, लेकिन कारण बनता है कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में बाबा की यज्ञ में डालने के लिए, सेवा के नाम से ही। फिर वो धीरे 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 कैसे अलग होते हैं, हुए हैं, और अभी भी लगता है कि ये शायद बेचारा जाएगा। इसी के लिए संकल्प करते हैं, इसी के लिए जैसे सेवा भी उन्हीं के नाम से करते हैं, उसी के लिए सारा प्रयास एनर्जी उनके लिए लगी रहती है उनकी, तो उनकी क्या गतमत होगी, खुद ही सोच सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुसल तैयार कर रहे हैं हम अपने आप के लिए। दूसरा वोकली में होता है, एक दूसरा मुसल मारता है, और यहाँ हमारा देखा मैंने, हम अपने आप ही अपने लिए मुसल बन जाते हैं कई बार। हम पहले तो कहा था इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, अभी इधर लेके आया, इस दुनिया में आया तो फिर क्या करना है, जीना ही पड़ेगा। कैसे भी रोते सहन करो, खुशी से सहन करो, या समझदारी से करो, ज्ञान के आधार से करो, बाबा के कहने से करो, करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए, नहीं तो हमारे जैसा खुश नसीब हम नहीं कोई बन सकता है, ऐसा हम वो गीत नहीं गा सकेंगे। फिर हमारी हंसी खुशी, वो अलौकिकता, वो संगम का मजा, ब्राह्मण के लाइफ का नहीं ले सकते हम। तो हमारा जो एनर्जी है स्टडी करने में और सेवा करने में व्यतीत होना चाहिए, उसी से हम निर्विघ्न रहेंगे, निर्बंधन बनेंगे। और हम जो बाबा कहता है निर्विघ्न रहना, मना क्या, मुस्लिमों का वार होना बंद हो जाता है अपने से या दूसरों से, कोई हमको वो नहीं करेगा। एक बार कहीं पढ़ा था मैंने, एक ज्ञान कहता है तुम्हारा बाबा जैसा तुम सन्यासी बनो, जैसे बाबा कहते हैं मैं सन्यासी बनाऊं, तुम भी सन्यासी बनो। सन्यासी बनना मना जेल में जाना, ये मधुबन में एक बहुत बड़ा तिहाड़ जेल है, तिहाड़ से भी ज्यादा
मीठी सुसाइड।
हाँ, मीठी सुसाइड है मधुबन निवासी, मीठा सुसाइड मना मीठी मौत,
जीवत्ता।
किसी को सहन भी करना है लेकिन किसी को बता भी नहीं सकते, करना ही पड़ेगा आपको, बता नहीं सकते आप, बताएंगे तो फिर इमेज खराब हो जाएगा और आपका ही नुकसान, और सहन शक्ति बढ़ाना पड़ेगा। तो जो जेल, वो जो जेल में होते, मैं जैसे मिलने गया, मिले मना, और यहाँ कैसे मिलते हैं, यहाँ कौन मिलता हम जेलियों से, वहाँ संबंधी सगे संबंधी कोई नहीं होता जेल में, और यहाँ भी ऐसी है, सब छोड़ छाड़ के कोई मिलने आता नहीं हमको। लेकिन हमारा वो जेल में डालते हैं जो गुना करते हैं कुछ, तो हमने क्या गुना किया, पतित बने और
तिरसठ जन्म दूसरों को भटकाए,
भगवान से बेमुख करने के निमित्त बने। नहीं, हमारे जो आदि संस्कार थे, जो सर्वगुण संपन्न थे, हम गुणों को खो लिया, गुणों को, यही हमारा ही गुना है। जो बाबा ने कितना हमको सर्वगुण संपन्न बनाया था, सर्वशक्तिशाली बनाया था, वो कहाँ गए सब, कितना धनवान बनाया था, टिप्पड़ घिसते घिसते बाबा जो मुरली में बोलते हैं, सब तुम कहाँ गवाया। तो उसकी गुना के कारण हमको यहाँ रह के बाबा सुधार रहा है, सुधार ग्रह है ये एक बहुत बड़ा। तो ये अगर हम जितना जल्दी सुधरेंगे उतना हम जेल से हम मैंने हिसाब किताब चुक चुक करेंगे, कर्मातीत बनेंगे। हाँ जी,
पीसा जाता है, या चावल का भी वो निकलता है,
वो तो पहले पार्ट में
हो, हम भी पीसे जाते हैं,
हाँ वही वो। तो इसमें क्या है, एडी से लेके चोटी तक जोर लगाना ही पड़ता है, पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। हम इसमें हमारा पुरुषार्थ करने का तरीका ठीक नहीं है तो हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं, तो इससे हमारा हमारे लिए भी ठीक नहीं है, दूसरों के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ
उतना
वो अच्छा है, लेकिन उस समय थोड़ा भारी लगता है, अब भी यहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन जब धूप निकलने के बाद है ना, जो ड्यूटी पर जाते हैं,
हाँ जी,
मैच्योर वहाँ पता पड़ता
है,
नहीं मालूम है हमको, जान अभी ये ऐसा है वैसा, ये मालूम है, फिर भी हमको व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, हमको इसे इन वाइब्रेशन से अलिप्त रखना है, न्यारा रखना है और बाप का प्यारा बनना है, प्यारा रहना है, उसके लिए हमको ध्यान रखना है। लेकिन अभी बाबा कहते हैं समय और स्वयं पर अटेंशन रखो, उसके कारण उसके लिए क्या करना है, जो समस्याएं हैं दुनिया की हालत देख के तो हमको बहुत सावधान रखना चाहिए, कितनी हालत ही बिगड़ रही, कितना बाबा ने बोला था हंगामा होगा, अभी एक महीना भी नहीं हुआ, बराबर हुआ, शुरू हुआ एकदम। तो ऐसे में हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अशरीरी बनने की आदत डालनी है, उसी से हमारा बचाव होगा, उसी से हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, नहीं तो यही आदत हमको आफत बनेगी, हमारे सामने आफत बन के सामने आएगी, अगर अदालत में जाना पड़ेगा। तो अभी 10 मिनट 15 मिनट अभी सच सच सुनाइए।